ओम शांति। मंच पर उपस्थित सम्माननीय आदरणीय मीरा दीदी जी का हम सभी इस बेहद सभागृह में बेहद के मंच पर दिल से स्वागत करते हैं, करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। बिना एकाग्रता के कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस ज्ञान मार्ग पर भी एकाग्रता के बिगर हम अतीन्द्रिय सुख या सुखी जीवन से वंचित रह जाते हैं। एकाग्रता के आधार से ही यादगार है शास्त्र में कि अर्जुन ने मछली की आंख फोड़ी थी और उसके पीछे एक ही साधना थी, वो थी एकाग्रता। तो आज के वातावरण और पुरुषार्थ के अनुसार बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं हम सभी के समक्ष आदरणीय मीरा दीदी जी। विषय है एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, इस पर मार्गदर्शन करेंगे। दीदी जी का परिचय इस तरह से है, पिछले 62 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, सांताक्रूज सब जोन के इंचार्ज है। बहुत कम आत्मा यज्ञ में ऐसी है जिन्हों को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी जगदम्बा जी का पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें से आप एक हैं। शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म के चेयरपर्सन हैं, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप सदस्य हैं, ब्रह्मा कुमारीज मुंबई स्थित हॉस्पिटल की एडवाइजरी कमेटी के आप मेंबर हैं, क्वाटुमल सैनिटेरियम ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं, दादा साहेब फाल्के सम्मान पत्र से आपको सम्मानित किया गया है स्पेशली मेडिटेशन सिखाने के लिए, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर आप स्पीच ब्रॉडकास्ट करते थे, लंदन से मानवता के प्रति आध्यात्मिक सेवाएं देने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा उत्कृष्टता के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस आपको प्राप्त हुआ है। ऐसे अनेक प्राप्ति से संपन्न और ये सारी प्राप्तियां केवल एकाग्रता के शक्ति के आधार से ही हुई है और इसी विषय को आज हमको लाभान्वित करेंगे। मैं नम्र निवेदन करती हूँ आदरणीय मीरा दीदी जी को, आप हमें लाभान्वित करें।
ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है एकाग्रता को बढ़ावा कैसे दे। जब हमारा जीवन चल रहा है और ज्ञानी और योगी तो आत्मा का बहुत सुंदर जीवन चल रहा है, तो इस जीवन में हम विधि पूर्वक करेंगे सब कुछ तो सिद्धि हमें अवश्य मिलेंगी, सफलता हमें अवश्य मिलेंगी। विधि यही है कि ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में, उसके अलावा भी लौकिक में भी एकाग्रता बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम बढ़ावा दें। जितनी एकाग्रता ज्यादा उतनी हमारी सफलता ज्यादा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ग्रेट मैन और ऑर्डिनरी मैन, महान मनुष्य और साधारण मनुष्य, दोनों के बीच में अंतर यही है कि जो महान मनुष्य है उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, जो मनुष्य है साधारण जो मनुष्य है उसकी बहुत कम होगी। साइकियाट्रिस्ट ने भी कहा है कि एकाग्रता से ही निर्णय ले सकते हैं कि एकाग्रता की ये मनुष्य एकाग्रता से ये मानव की क्वालिटी क्या है लाइफ की। अगर गुणवत्ता वाला जीवन हमें हो हमें चाहिए तो न सिर्फ एकाग्रता परंतु एकाग्र हम किसके ऊपर फोकस करते हैं वो भी बहुत आवश्यक है। तो वो ग्रेट मैन है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुंदर है और वही तो हमारी हो ये तो हम सब चाहेंगे। एकाग्र रहना माना एक को अग्रता देना एक को प्रायोरिटी अच्छी तरह से देना। एकाग्रता योग में भी चाहिए। योग अग्नि हमें प्रज्वलित करनी होती है वो धधकनी चाहिए भड़कनी चाहिए प्रज्वलित होनी चाहिए लेकिन वो कब होंगी जब हम एकाग्र होंगे। नॉर्मली क्या होता है जब पानी में कीटाणु होते हैं और हम उबला हुआ पानी पीना चाहते हैं तो हम गर्म करते हैं लेकिन कौन से पॉइंट तक बॉइलिंग पॉइंट तक। अगर आपने थोड़ा सा ठंडा किया थोड़ा गर्म किया फिर ठंडा किया फिर गर्म किया तो उसमें जो कीटाणु है वो समाप्त नहीं होंगे पानी वो प्योर नहीं बनेगा। तो योग भी अग्नि है और सबसे महत्व हम इस बात को देते हैं। बाबा रोज हम बच्चों को कहते रहते हैं मन मना भव मद्याजी भव बाबा को याद करो तो वो कैसे होगा एकाग्र होने से होगा तो हमारे विकर्म विनाश होंगे और विकर्म विनाश होंगे तो 63 जन्मों का हमारा हिसाब किताब हम चुक्त करते जाएंगे। कितनी सुंदर ये बात है कि हमें वो भोगना नहीं पड़ेगा। आज सारी दुनिया में भी हम देखते हैं डॉक्टर बनते हैं इंजीनियर बनते हैं जो भी प्रोफेशन में है वो भी कितना एकाग्र होकर के स्टूडेंट भी कितना एकाग्र होकर के पढ़ते हैं तब डिग्री प्राप्त होती है। आज एक संगीतकार होता है चित्रकार होता है गीतकार होता है वो भी बराबर उसमें एकाग्र होकर के ही सफलता को प्राप्त करते हैं। तो एकाग्रता के बहुत सारे प्रकार हैं। अगर सारे प्रकार हम अच्छी तरह से जाने उसको समझे और वो सारे प्रकार की हमारे में एकाग्रता हो तो हम अच्छी तरह से एकाग्रता को बढ़ावा दे सकते हैं और वो हमें करना ही है क्योंकि हमारे ही लाभ में है हमारे ही फायदे की बात है। समझदार व्यक्ति वो जरूर करेगा। पहले प्रकार की एकाग्रता है वैचारिक एकाग्रता अर्थात विचारों की एकाग्रता। आप सभी विशेष अपने घर में अपने अपने सेंटर पे अपने अपने स्थान पर विशेष अपने घर में सारा कारोबार करके फिर पहुंचते हो चाहे सुबह के क्लास में चाहे शाम के क्लास में लेकिन क्लास में आकर के या तो यहां अभी सभी बैठे हुए हो उस समय हमारा विचार कहां पर होना चाहिए सिर्फ 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 क्लास में सिर्फ सुनने में ज्ञान सुनने में माना हमारे जो विचार है वो सीमित होने चाहिए ज्ञान सुनने के बाहर नहीं जाने चाहिए। आज कोई मकान होता है ना तो भी उसमें चारों ओर उसमें बॉर्डर होती है, दीवार होती है, ताकि उसकी रक्षा हो। आज एक खेत होता है, उसमें भी बॉर्डर बना देते हैं, तो हमें भी एक सीमित बॉर्डर बना देनी है कि मेरे विचार अभी सिर्फ ज्ञान में हो। अगर उस समय हमारे विचार बाहर चले जाते हैं, सारे दिन की यादें में चले जाते हैं, कभी कभी आज मुझे क्या क्या करना है, या तो फिर मन से विचार किया कोई पुरानी बात का, बेमौका, बिना मतलब, बिना कोई रेफरेंस, नतीजा क्या उसका, कुछ फल मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। यहां बैठे बैठे मन चला गया लंदन अमेरिका, कुछ फायदा हुआ? तो जो हमारी एनर्जी और फ्रेशनेस जो हमें मिलनी चाहिए ज्ञान सुनने से, और उसमें भी सुबह का क्लास, वो तो सारे दिन का, बाबा कहते थे माजून मिला। एक बार मैं हिस्ट्री हॉल में बैठी थी, 1963 की बात है, 62 वर्ष हो गए, तो बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे पता है सुबह का जो क्लास है ना, मुरली क्लास, वो सुबह का माजून है सारे दिन का। माजून माना ड्राई फ्रूट्स की मिठाई, सुबह सुबह खाई जाती है। ड्राई फ्रूट्स कब खाते हैं? सुबह सुबह, ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, तो वो हमें मिले। तो इसीलिए हमें बुद्धि अपनी रखनी है बिल्कुल सीमित बुद्धि, सीमित विचार। तो इस बात का सभी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। दूसरे प्रकार की एकाग्रता है संबंधात्मक एकाग्रता। बहुत सारे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सारे सगा संबंधी और संबंध होते हैं, कहां कहां अलग अलग स्थान पे होते हैं। एक माला होती है, माला के मणके होते हैं, दाने होते हैं, वो दाने सारे एक धागे में पिरोए जाते हैं, लेकिन जब माला टूट जाती है तो दाने सारे बिखर जाते हैं। इसी ही प्रकार से अगर बहुत सारे हमने संबंध, बहुत सारे संबंधों की हमें याद आ गई, संबंध सभी से रखना अच्छा, वो अच्छी बात है, लेकिन वो संबंध को हमें याद करते रहना तो ये तो बिखरना हो गया, ये तो एकाग्रता के बदले व्यग्रता हो गई, एकाग्रता नहीं हुई। और बाबा ने हम बच्चों को ये शिक्षा दी है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें शिव बाबा की शरण में जाना है, हम गए हैं तो उसको हम ऐसे ही एक रस रखे। सेंटर पे एक बार एक माता आई तो कहा कि कल मैं क्लास में नहीं आऊंगी। तो हमने कहा कि कल क्या प्रोग्राम है आपका? तो कहा कि कल मैं मेरी ननंद की, उसके फिर उसके रिलेशन में नाम सुनाया, फिर उसके रिलेशन में, तो उसकी शादी में मैं जाऊंगी। मना कहा, कितना दूर का रिलेशन। तो इतने सारे संबंधों में हम व्यस्त रहेंगे तो हमें ज्ञान योग धारणा सेवा करने के लिए समय कहां मिलेगा? और बाबा ने हमें दूसरा ये शिक्षा दी है कि और संग तोड़, क्या कहा बाबा ने मुरलियों में, क्या कहते हैं बाबा, कि मुझ एक संग जोड़। तो हमें किसके संग में जोड़ना है और हम किसके संग में जोड़ रहे हैं अपने आप को? हमें तो बाबा के संग में जोड़ना है। क्यों? बाबा का संग क्या करेगा? हमें तारेगा। और बाकी सारे संग क्या करेंगे? डुबोएंगे हमें। यह हमें अच्छी तरह से ज्ञान भी है, पता भी है। तो इसीलिए संबंधात्मक एकाग्रता में हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि जो जरूरी सारे संबंध है वो तो रखने ही रखने हैं, लेकिन जैसे ही वो कारोबार पूरा हुआ तो फिर हमें उसको बार बार जोड़ने की, बुद्धि में याद करने की ये आवश्यकता नहीं है। जैसे विचार एकता में हमने देखा कि कैसे विचारों की एकाग्रता में लीकेज नहीं होना चाहिए कुछ भी हमारा। एक बर्तन होता है ना, उसमें एक छेद होता है तो क्या होता है? सारा बह जाता है, वो बर्तन में कुछ रहता नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का लीकेज है जो नहीं होना चाहिए। तीसरे प्रकार की एकाग्रता है ऐच्छिक एकाग्रता, अर्थात इच्छाओं की एकाग्रता। वैसे तो दुनिया में कहा जाता है कि जो इच्छाएं होती है वो इतनी ढेर सारी होती है सबकी। रेत में नदी किनारे जब हम जाते हैं, सागर के किनारे हम जाते हैं, तो कितनी सारी रेत वहां पर होती है। तो इच्छाओं के लिए कहा जाता कि रेत के माफिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम बच्चों को इच्छाओं के गुलाम कभी भी नहीं बनना चाहिए। इच्छाएं अगर हमने इतनी सारी रखी तो जैसे कि बेपंदे का एक लोटा होता है, कभी इधर लुढ़कता है और कभी इधर लुढ़कता है, हमारा भी ऐसे ही होगा। और इच्छाएं बहुत सारी हमने रखी तो माना दो घोड़े पर, कहा जाता है कि हम दो घोड़े पर सवार हो रहे हैं। अगर दो घोड़े पर कोई सवार होते हैं तो हालत उसकी क्या होती है? पटक जाएगा नीचे, गिर जाएगा वो और चोट लग जाएंगी। कभी कभी होता है ऐसा, बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं, पूरी नहीं होती हैं, फिर निराश हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, डिप्रेशन तक आ जाता है। ऐसे है, बहुत सारे केसेस है, कईयों का है ऐसा। कहा जाता आप भय बूढ़ा, बहुत फेमस ये कहावत है, आप भय बूढ़ा और तृष्णा भय जवान। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे में, ये हमारे फायदे की बात ही नहीं है। हमें रखनी है एक ही इच्छा और वो इच्छा है सर्वश्रेष्ठ इच्छा, कि कोई भी प्रकार की इच्छा के बिगर हम शिव बाबा को याद करें। यह है सर्वश्रेष्ठ इच्छा और हम बाबा के समान बनते जाए, बनते जाए, बनते जाए, बाबा के समीप रत्न हम बनते जाए। तो हमें क्या करना है? जो ये इच्छा है वो इच्छा रखने के, मैं बाबा के समान बनने के लिए क्या 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 मैं पुरुषार्थ करूं, मैं क्या बातें मेरे जीवन में ध्यान में रखूं। तो बहुत सहज रीति से हम बाबा के समान नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो ये क्वालिटी वाली इच्छा, गुणवत्ता वाली इच्छा हमको रखनी है, बाकी कोई नहीं। बाबा कहते हैं कि अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ कहा जाता, तो अश्व तो हमारा मन ही है जो इच्छाएं करता ही रहता है, तो वो हमें इस यज्ञ के अंदर, वही तो हमें क्या करना है सभी को, स्वाहा, वही तो करना है। तो एकाग्र होना है हमें एक ही सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाली पराकाष्ठा वाली इच्छा में, कि बिगर कोई इच्छा में बाबा को ज्यादा से ज्यादा समय निरंतर, बाबा कहते हैं निरंतर योगी है हम सभी, सदा के योगी है, स्वतः योगी है, हम सफल योगी हैं, तो ये योगी हम बने। तो ये होगा एकाग्रता से। एक बार सिकंदर यहां पर आ रहे थे अपने ग्रीस देश से, तो अपने गुरु के पास जाकर के वहां पर कहते हैं कि गुरुजी मैं भारत देश जा रहा हूं, तो भारत देश से मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि भारत से आप एक और आध्यात्मिक गुरु लेकर के यहां पर आइए, क्योंकि भारत देश उसके लिए फेमस है, नामी ग्रामी है। वो कहता है ठीक है, और फिर यहां अफगानिस्तान से, कश्मीर से, पोरस राजा से लड़ाई लड़ करके वो अंदर भारत देश में अंदर आ जाता है। तो यहां पर सभी को पूछता है, तो सभी कहते हैं ये एक जो गुरु है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन आप सैनिक को उसके पास नहीं भेजना, आप स्वयं उसके पास जाना और बहुत रिस्पेक्ट से उनको कहना, आप रिक्वेस्ट करना। वो कहता है ठीक है, वो लिखता है और फिर वो फ्रेम आदि करके फिर उसके पास लेकर के जाता है। तो जब गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु उसको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो सारी बात सुना देता है कि आप मेरे देश में आप आइए, मेरे गुरु ने कहा है। तो वो कहता है कि मैं यहां पर ठीक हूं। तो फिर सिकंदर उसको कहता है कि मैं वहां पर आपको महल माड़िया दूंगा, तो भी वो गुरु कहता है कि मैं यहां पर ठीक हूं। फिर वो कहता है आपको नौकर चाकर दास दासी ये भी दूंगा, फिर भी वो ना बोलता है, कहता है भोजन के लिए बहुत सारे होंगे, वो आपको दूंगा व्यंजन, तो भी वो ना कहता है, आपको सैन्य सारा दूंगा, वो ना कहता ही जा रहा है। आखिर लास्ट में उसने कह दिया कि मैं यहां ही ठीक हूं, मुझे नहीं आना है। तो ये क्या था गुरु का, भारत देश के गुरु का क्या था, इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी कि मुझे यहां पर ही रहना है। तो सिकंदर सोचता है कि अरे मैं इतना लड़ाई करता हूं, लोग सैन्य मरते भी हैं, और इतना प्राप्त करता हूं, महल माड़ियां आदि आदि, और इसको सब कुछ रेडी मिल रहा है तो भी वो नहीं आ रहा है, इतना तो क्या इसको प्राप्ति हुई है। तो बात है ऐच्छिक एकाग्रता की, वो होना बहुत जरूरी है। चौथे प्रकार की है लक्ष्यात्मक एकाग्रता, लक्ष्य की। हम सभी के समक्ष लक्ष्य है, बाबा ने हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए कहा है, और हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा पूरा लक्ष्य उसमें हो। अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्षण हमारे में कोई भी हालत में आने वाले नहीं है। एक बार एक डॉग था, श्वान था, तो उसमें किसी ने क्या किया कि इसकी पूंछ जो है वो मुझे सीधी करनी है। तो 2 साल तक लोहे का नाल जो था वो बना करके उसके अंदर डाल दिया, उसकी पूंछ में डाल दिया 2 साल। परंतु 2 साल के बाद वो नाल लोहे की निकाला, सीधी जो थी, लेकिन उसका जो पूंछ थी वो सीधी हुई होगी, हुई होंगी? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, जैसी थी वैसी रही। क्यों? क्योंकि उसका क्या नहीं था, लक्ष्य ही नहीं था उसका, तो नहीं हुई। लक्ष्मण का लक्ष्य था कि मुझे राम के साथ ही रहना है, तो उसने अपना सब कुछ, महल आदि सब कुछ छोड़ करके वो राम के साथ ही रहा। लक्ष्मण रेखा वो भी बहुत फेमस है। जो लक्ष्य के लिए हमें जरूरी है वो सब कुछ हमें करना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। अगर हम लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाते हैं तो कौन आ जाता है? सीता के लिए कौन आ गया? माया रावण। बाहर निकलेंगे तो ये होगा। तो हमेशा हमारे सामने लक्ष्य हमेशा सदा के लिए हो, और ये लक्ष्य जो है वो कभी भी बदली नहीं होना चाहिए, वो एक स्थिर स्टेबल रहना चाहिए लक्ष्य। कई होते ना बार बार बदली कर देते हैं, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, वो बिल्कुल नहीं करना है। बचपन में एक इंग्लिश में कविता थी, उसमें एक लड़का था, छोटी उम्र का था, उसको बहुत था कि मैं अपने विदेश की बात है कि अपने देश का जो ध्वज है वो मैं बर्फ की पहाड़ी पर जाकर के आज मैं उसको ध्वज वहां पर फहरा दूं। तो निकलता है, ठंडी थी, जब ठंडी में वो ध्वज लेकर के निकलता है अपना झंडा लेकर के, तो वो चलता जाता है चलता जाता है, तो बीच में कईयों के घर आते हैं, तो जब कईयों के घर आते हैं उनको बर्फ में चलने के लिए वो शूज के आवाज आते हैं, तो जब वो चल रहा होता है तो बारी खोल करके उसको कहते हैं कि आप आज की रात यहां रुक जाओ, ठंडी बहुत है, फिर कल चले जाना, बाद में चले जाना। वो कहता ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ऐसे कईयों ने बीच में किया, अपनी बारी खोल करके, खिड़की अपनी खोल करके, उसने चाय पीके जाओ, कॉफी पीके जाओ, गर्म पानी पीके जाओ, लेकिन खिड़की खोल खोल करके कह रहे थे, लेकिन वो जो है वो किसी के पास भी नहीं गया। मुझे आगे बढ़ना है, और वो सचमुच पहुंच गया और झंडा वहां पर लगा करके आया बर्फ की पहाड़ी पर। तो ये क्या था उसका, क्यों उसने किया ये? क्योंकि उसको लक्ष्य अपना बहुत ही पक्का था कि कोई भी रुकावट लक्ष्य में आए, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य एक रस, अटल अचल होना बहुत आवश्यक है। अगर ये लक्ष्य नहीं है तो कितना मंदिरों में जाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, यज्ञ करते हैं, अर्चना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी ये मन में उनके ख्याल नहीं होता है कि हम नर से ये नारायण जो है सामने, जो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे हम बन सकते हैं। कभी भी ये बात मन के अंदर पूरी लाइफ हो जाती है, लेकिन ये बात मन में कभी भी नहीं आती, और इसलिए वो बनते भी नहीं है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा अपने जेब में, अपने तकिए के नीचे और अपने सेफ में जहां भी जाते थे, वहां भी साथ में उनके नारायण का जो था चित्र वो रहता ही था हमेशा। ये बहुत सुंदर विशेषता की बात है बाबा की। एकलव्य का भी जो एग्जाम्पल है वो कितना सुंदर है। उसने क्या किया, पेड़ के अंदर मूर्ति रखी द्रोणाचार्य गुरु की, और वो अर्जुन से भी तीखा चला गया, आगे बढ़ गया, क्योंकि उसको बहुत लक्ष्य था। और लक्ष्य में जब सामने दृश्यात्मक होता है कोई भी, माना उसका चित्र उसने रखा, तो जैसा चित्र कहा जाता है वैसा चरित्र। कईयों घर में कौन सा चित्र रखते हैं, अभिनेताओं का रखते हैं, ऐसे होता है दुनिया में, उनका फिर लक्ष्य वही होता है, ऐसी स्टाइल लाइफस्टाइल। कईयों का आध्यात्मिक लोगों का होता है तो उनकी लाइफस्टाइल फिर ऐसी हो जाती है जीवन शैली। तो लक्ष्य पर हमें हमेशा ये बात जरूर ध्यान पे रखनी है। पांचवी एकाग्रता है भावात्मक एकाग्रता, जो भावनाओं की एकाग्रता है। हमेशा हमारी भावना बहुत ऊंची होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए और शुभ होनी चाहिए। जो भी सारे सन्यासी हुए हैं, आपने उनका नाम सुना होगा और आपको पता भी होगा कि कैसे अपना नाम वो चेंज करते थे, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद, पीछे क्या लगा, विवेक प्लस आनंद, कि आनंद के लिए सन्यासी बने। मुक्तानंद, मुक्त प्लस आनंद, उसका तो नाम कुछ और था। मूल शंकर से दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, तो दयानंद, दया प्लस आनंद, पीछे आनंद लगा। शिवानंद, शिवानंद स्वामी हो गए। सच्चिदानंद, परमानंद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनके पीछे सन्यास धारण करने के बाद आनंद शब्द लगा। तो हम सभी राजयोगी बने हैं, हम सभी आनंद के लिए हैं। जीवन के अंदर आनंद होना बहुत आवश्यक है। तो एकाग्रता हमारी ये हो कि परम आनंद, परम पिता परमात्मा, जो सबसे बड़ा गुण है आनंद का, जो आपको हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी वैभव से, ये हमें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। आनंद इतना उच्च है कि आनंद हमें परमात्मा से ही मिल सकता है, वही परमानंद है, आनंद के सागर है, बाकी किसी से भी नहीं। ये बहुत मन में पक्का याद रखना है। तो ये एकाग्रता होना भावात्मक कहा जाता कन्विक्शन से कन्वर्जन, माना जो अच्छी तरह से हम इसमें निश्चय रखते हैं, इसको विश्वास जिसमें हम करते हैं और उसको हम समझते हैं, तो उसकी प्राप्ति हमें जरूर होती है, क्योंकि हम उस तरफ परिवर्तन, कन्वर्जन, माना हम परिवर्तन करते हैं। कभी कभी भाव बहुत सुंदर होते हैं कईयों के, और कभी कभी देखो तो उदासीनता के, मायूसी के, निराशा के, डिप्रेशन के, घृणा के भाव, कभी हार कभी जीत, कभी ठंडी महसूस होती कभी गर्मी महसूस होती, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी बहुत घृणा किसी के प्रति और कभी बहुत ही अटैचमेंट, मोह किसी के प्रति, लगाव किसी के प्रति, कभी कभी एकदम उमंग उत्साह में और कभी कभी एकदम स्वयं को डाउन फील करते हैं, लो एकदम फील करते हैं, तो ये भी हमारे जीवन के अंदर नहीं हो। भाव हमारा एक सरीखा होना चाहिए, जो हमें बाबा की ओर आगे बढ़ाए। तो ये है भावात्मक एकाग्रता। फिर बात आती है बौद्धिक एकाग्रता की, बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि को कैसी रखनी चाहिए? बाबा ने हमें कहा है अपनी विवेक बुद्धि से सोचो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या। बुद्धि हमारी विनाशकारी नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। एक दर्जी था, उसका बेटा था, उसका बटन शर्ट का टूट गया, तो अपने पिताजी के पास जाता है दुकान में और कहता है ये लगा दीजिए। वो लगा देता है और उस समय वो देखता है, बराबर निरीक्षण करता है बच्चा, कि पिताजी ने क्या किया, सबसे पहले सुई निकाली। तो सुई माथे में, उसने टोपी पहनी थी तो उसमें से सुई रखी थी, तो वो सुई निकाल करके कर दिया और धागा फिर बचा, तो पांव के नीचे उन्होंने रखी थी कैंची, तो कैंची निकाल करके पांव के नीचे से उन्होंने धागा काट दिया। तो बच्चा उनको पूछता है कि पिताजी आपने सुई माथे पे रखी और कैंची पांव के नीचे रखी। तो पिताजी कहता है कि सुई जो है ना वो जोड़ने का काम करती है और कैंची जो है वो क्या काम करती है, तोड़ने का, अलग करने का काम करती है, इसलिए ऐसा रखा जाता है। तो मेरी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जोड़ने की होनी चाहिए, न कि तोड़ने की। कहीं होते हैं ना अपना मिर्च मसाला डाल करके कहीं एक की बात दूसरों को सुना देते हैं, उनका सारा संबंध टूट जाता, रिलेशन खराब हो जाता। तो ये काम जो है ऐसा हमें कभी भी लाइफ के अंदर नहीं करना है। मेरी बुद्धि, बाबा ने क्या कहा है मुरलियों में, पारस बुद्धि होनी चाहिए, सालिम बुद्धि होनी चाहिए, शार्प तीक्ष्ण बुद्धि मेरी होनी चाहिए, डिवाइन बुद्धि होनी चाहिए, ईश्वरीय बुद्धि होनी चाहिए, विवेक बुद्धि मेरी होनी चाहिए, प्रीत बुद्धि बाबा से मेरी होनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा पुरुषोत्तम बुद्धि बनो, गोल्डन बुद्धि बनो, गोल्डन एजेड बुद्धि बनो, बहुत अच्छी बुद्धि बनो, श्रेष्ठ बुद्धि बनो कहा, सरेंडर बुद्धि बनो, प्लानिंग बुद्धि बनो, चमत्कारी बुद्धि बनो, सतो बुद्धि बनो, उत्तम बुद्धि बनो, फ्रेश बुद्धि रहो। एक मुरली में कहा फ्रेश बुद्धि रखो हमेशा। तो ये सारी बातों पर हमें ध्यान रखना होगा कि मेरी बुद्धि, पारस बुद्धि हम रख रहे हैं। पारस लोहे को टच करता है, सोना बना देता है। तो ये सभी हमें अपनी स्वयं की चेकिंग, मेरी बुद्धि कौन सी है वो हमें जरूर चेकिंग करनी है। फिर बात आती है विरामात्मक एकाग्रता, विराम की एकाग्रता। आज कोई कविता होती है उसको भी थोड़े लाइन में फिर फुल स्टॉप होता है, कोई ऐसे होता है उसको भी, निबंध उसको भी ऐसे होता है, तो हम अपने जीवन के अंदर अपने विचारों का, अपनी वाणी का, अपने कर्म का, इसमें हम विराम दे रहे हैं, संबंध संपर्क का, सब में फुल स्टॉप। जरूरी है जिस टॉपिक पर सोचना वो सोच लिया, फिर तुरंत उसको विराम फुल स्टॉप दे दो। बाबा ने 3 बिंदु सिखाए, सबको पता है, आत्मा बिंदु, शिव बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। सोचना ही नहीं है ज्यादा उसके ऊपर कुछ, तो विरामात्मक एकाग्रता का ध्यान देना है। उसके बाद में है प्रत्यात्मक एकाग्रता। प्रत्यात्मक एकाग्रता में प्रीत मेरी बाबा के साथ हमेशा बनी रहे, मैं कभी भी विपरीत नहीं बनूं। नाव जब नदी के अंदर चलती है, पैसेंजर को लेती है उसमें, और फिर एक किनारे से ले लिया, फिर नाव चलती है मुसाफिर को लेकर के और दूसरे किनारे पर जाकर के उसको उतार देती है, छोड़ देती है। ये उसका कार्य होता ही है। लेकिन अगर नाव को पानी के साथ लगाव हो जाता है तो नाव क्या करेंगी, पानी को अपने नाव में ले लेंगी, तो नाव डूबेंगी। अगर पानी को नाव के साथ लगाव हो जाता है तो पानी भी क्या करेगा, पानी के अंदर नाव को, वो चक्री होती है ना, उसमें ले लेगा, तो भी डूबेंगे। तो मेरा लगाव किसी से भी ना हो, लेकिन मेरी प्रीत किसके साथ हो, बाबा के साथ। यही हमेशा हमारे ध्यान पे रहना बहुत आवश्यक है। फिर बात आती है मान स्वमानात्मक एकाग्रता। कोई भी आत्मा हो, चाहे बालक, बालक ही क्यों ना हो, छोटा सा, लेकिन हमें हरेक को क्या देना है, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। हमें पता नहीं है कि हमारे इतने सारे जन्मों में किस किस ने हमें कहां पर, हमारे पर उपकार किया हो, हमें क्या मदद की हो, डूबते हुए को भी बचाया हो, डूबे हुए को भी। और इस जन्म में मैं उसके साथ खराब व्यवहार करूं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो हरेक के साथ मुझे मान सम्मान देकर के ही व्यवहार करना है, बातचीत करनी है। ये है मान स्वमानात्मक एकाग्रता। और हमें हमेशा हमारे स्वयं के स्वमान में भी रहना है। कितने सारे स्वमान रोज बाबा ने हमें दिए हैं, 7 स्वमान तो है ही, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, शक्ति स्वरूप, डिवाइन है हम, पद्मा पद्म भाग्यशाली है, संतुष्ट मणि है, खुशनुमा है, खुश मिजाज है, खुश किस्मत है, खुश नसीब है। कल्प कल्प की मैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा परमात्मा को अति प्रिय हूं, योगी तो आत्मा परमात्मा को अति प्रिय हूं। कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूं, विजयी रत्न हूं, मैं विजयी हूं ही। विजय मेरे गले का हार है, विजय मेरे गले की माला है। विजयी थी, विजयी हूं, विजयी रहूंगी, सदा प्राप्ति स्वरूप हूं, माला माल हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, लाइट हाउस माइट हाउस हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, दानी वरदानी महादानी हूं, त्यागी तपस्वी सेवाधारी हूं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त उदाहरण मूर्त हूं, पूर्वज हूं, पूज्य हूं, अंगद हूं, हनुमान हूं, पार्वती हूं, सीता हूं, बाबा ने कहा सच्ची सीता हो, एक मुरली में कहा मीरा हो, तो ये सारे जो हमारे स्वमान है इतने सुंदर बाबा रोज कहते रहते हैं मुरलियों में, तो हमें वो स्वमान को बार बार स्वमान में एकाग्रता रखनी है। हम आगे ही आगे बाबा के समान बनने में बढ़ते जाएंगे। सुखात्मक एकाग्रता, सुखात्मक एकाग्रता मुझे हमेशा सुख की बातों को ही मुझे याद करना है। मैं सुख स्वरूप हूं, सुख के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे स्टॉक में और कुछ नहीं, मेरे भंडार में और कुछ नहीं, सुख ही सुख है, दुख नहीं है। दुख की बाबा कहते हैं लहर में भी नहीं आना है, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे किसी से कुछ हुआ हो, इतना मेरा सेंसिटिव नेचर मुझे थोड़ी बनाना है। फिर तो बाबा क्या टाइटल दे देते हैं, छुई मुई का पौधा, जरा सा टच करते हैं, जरा सा छूते हैं उसको तो एकदम मुरझा जाता है। क्या इतना भी हम हजम नहीं कर सकते हैं किसी के ऐसी वैसी कोई भी प्रकार की, उनके संस्कार के अनुसार उसने कुछ कहा बात, तो हम नहीं हजम कर सकते हैं क्या? ज्ञान हमें क्या सिखाता है? हम मुरझा जाए क्या, उदास हो जाए, निराश हो जाए सुन करके, मूड ऑफ कर दे? वो तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है मूड ऑफ शब्द, बिल्कुल नहीं। हमेशा आनंद में रहना है, खुशी जैसे तो खुराक नहीं बाबा ने बोला है, तो इसलिए कभी भी हमें दुख की लहर में आना नहीं है, तब हम किसी को भी दुख देंगे भी नहीं और दुख लेंगे भी नहीं। तो सुख की सारी बातें याद करिए, हम ज्ञान में आए, कितना हमें अच्छा लगा कोर्स किया, तो एकदम उमंग उत्साह, ऐसा ही उमंग उत्साह हमारा है अभी। मैं याद करती हूं कि मैं मम्मा को मिली थी 1963 में, मैं थी 15 साल पूरे हुए थे, 16वां चल रहा था और एसएससी में थी, तो 2 घंटा दूर आना 2 घंटा दूर वापस जाना, माना 4 घंटा लगता था जहां पर रहते थे घर से। डॉक्टर निर्मला दीदी ने मैसेज दिया कि मम्मा मातेश्वरी जी आए हैं, मम्मा उनको कहते हैं सभी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के, तो आप सारा परिवार चलो। तो निर्मला दीदी के साथ हम जाते थे, पूरा मार्च अप्रैल मई जून तक मम्मा वहां पर थे, तो कॉलेज शुरू हुई 10 जून को, तो इतना सारा लाभ मिला रोज क्लास में, मैं अभी भी याद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुख महसूस होता है कि वो भी क्या अच्छे एकदम दिन थे, अभी भी अच्छे ही दिन है बहुत, लेकिन वो भी याद करके सुख प्राप्त करते हैं ना। बाबा हमेशा मुरली में, कई बार मैं सुना है गीत, वो 2 लाइन बजती थी हिस्ट्री हॉल में बाबा के समक्ष कि बचपन के दिन भुला न देना, तो आपके जीवन में भी ये बात होगी, 1 लाइन गाइए सभी, ओ बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। मम्मा ने एक बार मुझे बुलाया और कहा कि आप जो है रोज क्लास में आते हो, आपका नाम क्या है? आगे मैं बैठ जाती थी पहली रो में, सारी कन्याएं आके बैठती थी, सब छोटे होते थे वो, तो मैंने कहा कि मम्मा मीरा मेरा नाम है। तुरंत मम्मा ने कहा कौन सी मीरा, पीले पीतांबर वाले की या टाई कोट वाले की? मैंने क्या जवाब दिया होगा? वो मम्मा की बात आज तक मैं याद करती रहती हूं कि कैसा मेरे पर उस समय इस रीति से मम्मा ने कहा, जो इतना प्रभाव मेरे पर हमेशा रहा। साकार बाबा के पास मैं आती थी छुट्टियों में, मई वेकेशन होता था, तो एक बार मुझे 64 की बात है, तो एक बार मुझे थोड़ा बुखार सुबह में आया। बॉम्बे में गर्मी थी, मुंबई में यहाँ उस समय ठंडी थी बहुत, मई मास में भी काफी ठंडी थी सुबह। तो क्लास में मैं गई नहीं, रोज जाती थी। तो बाबा ने निर्मला दीदी को क्लास के बाद पूछा, वहीं खड़े रहकर के, क्लास में खड़े रहकर के पूछा कि ये बच्ची आज आई नहीं है जो आगे बैठती थी। तो दीदी ने सुनाया कि थोड़ा बुखार है उसको, तो आज आई नहीं है। तो बाबा ने तुरंत जाकर के क्लास के बाद में एक बाबा के बगीचे का एक पपीता संतरी दादी जी को भेजा लेकर के कि बच्ची को देकर के आओ, ये मेरा बच्ची को देकर के आओ, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, कमाल है बाबा के। और सचमुच दादी जी जब आए देने के लिए, तब जस्ट ट्रेनिंग सेंटर नया बना था पांडव भवन में, तो वहां पर मैं नीचे के कमरे में थी। तो दादी जी ने कहा, बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है कि बच्ची ने कुछ खाया नहीं होगा सुबह से, उसको देकर के आओ, बाबा के बगीचे का है बोलना। मैं तो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी गदगद अंदर से हो गई कि कमाल है बाबा की, इतने सारे हिस्ट्री हॉल में दादी जी और सभी क्लास में है बड़े बड़े, और बाबा ने मुझे याद किया। याद तो किया, पूछा, लेकिन साथ में बाबा के बगीचे का भेजा पपीता, और वो भी संतरी दादी जी के साथ। माना तीन चार बातें कमाल की हो गई। वो टेस्ट पपीते का मैं आज तक नहीं भूली हूं कि बाबा ने इतना केयरिंग नेचर, बाबा का इतना लविंग नेचर, इतना कि बगीचे का भेजा और तुरंत भेजा, और बाबा को कैसे मालूम कि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, ये भी तो कमाल की बात हुई। फिर दोबारा बाबा ने एक बार मेरे को रात को 8 बजे बुलाया, तो मैं गई। मुझे लगा कि जो बहन आई थी उसने कहा बाबा बुला रहे हैं, तो मुझे लगा कुछ मिस्टेक तो मेरे से नहीं, सारे दिन में कुछ हो गई है, भूल तो कुछ नहीं मेरे से हुई है कि बाबा मुझे बुला रहे हैं अभी। तो मैं गई, तो बाबा के कमरे में वहां पर अंगूठी में गरम गरम लच्छू दादी मानी छोटी छोटी बना रहे थे रोटी, मानी माना, और बाबा ने खुद स्वयं उसमें मक्खन और शक्कर छोटी छोटी वो डाला, उसमें पाउडर जो होता है वो, और वो डाल करके मुझे कहा, दरवाजे में मैं खड़ी थी, तो बोला आओ बच्ची आओ बच्ची, तो मैं तुरंत गई, तो बाबा ने मेरे मुख में ही सीधा डाल दिया। वो टेस्ट भी आज तक है मेरे पास। आज तक मैं याद करती हूँ वो टेस्ट को, कि वो टेस्ट अभी नहीं आता है किसी में भी जो बाबा के हाथ से और दृष्टि लेके खाया। फिर एक बार बाबा ने मुझे कहा कि चलो बैडमिंटन खेलते हैं, चलो बच्ची। तो बाबा की तो इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतनी हाइट अच्छी, तो बाबा तो जीत गए उसमें बैडमिंटन खेलने में, और बाबा को तो अच्छी प्रैक्टिस भी अच्छी थी खेलने की। तो बाबा ने बोला आओ बच्ची, बुला करके मुझे टोली दिया, बहुत अच्छी टोली थी, मीठी टोली, और फिर कहा कि बच्ची आपको पता है जो हारते हैं ना उसको बाबा डबल टोली देते हैं। तो मैंने कहा ये तो और अच्छा हो गया, हार में मेरी जीत हो गई कि बाबा ने अपने हाथों से मुझे डबल टोली दी। तो वो सुख की सारी बातें मैं आज तक याद जो है वो करती रहती हूँ। समय हो गया है तो इसलिए मैं क्लास अभी पूरा करती हूँ। ओम शांति।
इक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, इक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, इक तेरे ही गुण गाऊं, इक तेरे ही गुण गाऊं।